दो नाम है आज हमारे सामने, अल मुतकब्बिर, इसका मतलब होता है बहुत बड़ाई वाला, और दूसरा नाम है अल कबीर, बहुत बड़ा। इंशाल्लाह ताला हम इन दोनों को सामने रखते हुए देखेंगे कि अल्लाह सुबहाना ताला का ये नाम अपने अंदर क्या सिफात रखता है। कुछ मुफस्सरीन की कोटेशंस आपके सामने रखूंगी कि हमसे पहले लोगों ने जो इल्म और अमल में हमसे बहुत आगे थे, और जिन्होंने बराह रास्त अल्लाह के नबी सल्लम की अहादीस को देख के कुरान पाक को समझा था, तो वो अल्लाह ताला के नाम अल मुतकब्बिर के बारे में क्या कहते हैं। इन्हीं मुफस्सरीन में से एक मुफस्सिर कतादा काफ से वो लिखते हैं कि अल मुतकब्बिर जल्ला जलालुहु कौन है, हर बड़ाई से बरतर है, और वो जो अपने बंदों पर जुल्म से मुबर्रा है, यानी वो जात जो खुद बड़ा है, खुद बड़ाई वाली है, लेकिन अपने बंदों पर जुल्म नहीं करती, उसको मुतकब्बिर कहते हैं। इसी तरह एक और कोटेशन इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह की है, फरमाते हैं वो मखलूक की सिफात से ऊंचे हैं, और जब मखलूक इनसे बड़ाई में मुखासमत करता है तो वो उसे झिड़क देता है। आसान लफ्ज़ों में इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला वो है जिसकी सिफात अपनी मखलूक से बहुत ज़्यादा हैं, कभी कभी जब बंदे उसकी ना माने तो वो उनको झिड़क देता है, और वो क्यों ना झिड़के, उसका हक है, इसलिए कि उसने पैदा किया, नेमतें वो देता है, तो फिर बात अगर उसकी ना माने तो फिर झिड़के क्यों ना। बात समझने के लिए माँ और बच्चे के ताल्लुक को बड़े आराम से देखा जा सकता है कि जब बच्चे माँ की नहीं मानते तो माएँ हर मुमकिन तरीके से उनके साथ सख्ती करती हैं, तो माँ तो क्या देती है बच्चे को, 9 माह पेट में रख के निकाल बाहर फेंकती है, एक एक दिन गिन रही होती है कि कब बच्चा पेट से निकले और मेरी मुश्किल आसान हो। 2 साल दूध पिला के आज़ाद कर दिया, चंद दिन साफ सुथरा किया, फिर सारी ज़िंदगी बच्चा काम खुद करता है, तरबियत करती। किसी माँ की बेरुखी इससे बढ़ के क्या होगी कि बाज़ दफ़ा बच्चे को ऐन बचपन में छोड़ के इस दुनिया से चली जाती है, जवानी में चली जाती है, और कुछ नहीं तो पाल पोस के 15-20 साल बच्ची को अपने घर से दूर कर देती है। ठीक है, ये फितरत का असूल है, लेकिन माओं का इतना अगर हक है तो उस जात का कितना हक होगा जो ना हमें 9 महीने रहने के बाद इस दुनिया से फेंकता है, ना हमें कुछ साल या कुछ महीने खिला पिला के कहे अब मैं कहाँ से दूँ, जिसके खजाने इतने वसी हैं, फिर उसका हक कितना ज़्यादा होगा। अगर उसने अपना नाम अल मुतकब्बिर रखा तो इसमें हमें कहना चाहिए कि ये नाम उसको सूट करता है, ये उसको लगता है। दुनिया में भी इंसानों के नाम होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बड़े मिस मैच होते हैं। नाम तो रख लेते हैं अल इल्म दीन, पर लिखना पढ़ना नहीं आता, एक लफ्ज़ नहीं लिख सकते। नाम तो रख लेते हैं हम जमाल, और ज़ाहरी शक्लों खूबसूरत नहीं होती। बाज़ दफ़ा नाम तो होता है साजिदा, और सजदे करने की तौफीक कमी मिलती है। नाम होता है आबिदा, लेकिन इबादत ज़िंदगी में कमी होती है। तो लिहाजा अल्लाह के नाम उसकी सिफात उसके वसफ़ हैं। अल्लाह ताला का नाम अल मुतकब्बिर है, तो हकीकत में ये नाम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो होना चाहिए। इसी तरह इमाम कुर्तुबी हैं, ये सब अरबी मुफस्सिर हैं, अल्लाह करे कि इनकी तफसीरें उर्दू में हों इसके तर्जमे, और आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें। इल्म के खजाने बंद है अभी भी, यकीन करें। बाज़ दफ़ा मैं सोचती हूँ कि हम लोग कितनी कोशिश करते हैं दूसरी ज़ुबानें सीखने की, और सीख भी लेते हैं, दुनिया में फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन अगर अरबिक ज़ुबान हमारी इस तरह की ज़ुबान हो कि जिसको हम पढ़ सकें, तो कितने फ़ायदे उठा सकते हैं हम किताबों से। अमूमन अरबी सीखी भी जाती है तो स्पीकिंग अरबी सीखते हैं, हालांकि मेरी नज़र में अगर कोई मुझसे पूछे तो स्पीकिंग अरबी की बजाय रीडिंग अरबिक सीखने की ज़रूरत है, और वो आती है अल्लाह की किताब को पढ़ के। एक किताब अगर आप अरबिक में पढ़ लेते हैं और साथ थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, तो आप फिर अरबी की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल इमाम कुर्तुबी कहते हैं, अल मुतकब्बिर जल्ला जलालुहू वो है जो अपनी रबूबियत में बड़ा है। रबूबियत क्या होती है? पालना। इसको भी थोड़ा सा वाजह कर दूँ, रब का लफ्ज़ तो हम बोलते ही हैं ना, रब्बिल आलमीन, तो रब का लफ्ज़ होता है रा बा से ज़र्रे को कमाल तक पहुँचाने वाला। यानी अल्लाह की ज़ात क्या है कि एक ज़र्रा, इंसान जब दुनिया में उसका वजूद बनना शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है? एक सेल से, एक कतरा पानी का, जिसके अंदर छोटी छोटी कितनी जानें होंगी, और वो एक कतरे से एक इंसान को किस शक्ल में ले आता है। आज अगर हम अपने आप को देखें तो हम सोच सकते हैं कि क्या हम एक ज़र्रे से पैदा हुए। तो अल्लाह की ज़ात बंदे को उसकी दुनिया में रहते बसते बड़े से बड़ा करती है। तो कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात वो है जो अपनी रबूबियत में बड़ी है, इस जैसा कोई नहीं, और अल मुतकब्बिर हर चीज़ से बरतर, मिटने और ख़त्म होने वाली चीज़ों से बरी है। यानी दुनिया की हर चीज़ मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, हर चीज़ हलाक होने वाली है मगर उसका चेहरा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, इस दुनिया पे हर जो चीज़ है वो फना होने वाली है, अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। तो अल्लाह का नाम अल मुतकब्बिर क्यों है? कि सब मिट जाएंगे लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है वो बाकी रहेगी। इब्न जरीर कहते हैं कि अल मुतकब्बिर का मानी है बरतर शान वाला, और हर बाकी चीज़ उससे कमतर है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अगर हम सामने रखें अल्लाह ताला के नाम की, तो अल मुतकब्बिर के चार मानी हमने अभी तक देखे। मैं रिवाइज करवा देती हूँ ताकि जिनके छूट गए हैं वो लिखना चाहें तो लिख लें। पहला मानी है जो हर जुल्म शर और बुराई से बरतर है। ना अल्लाह ताला जुल्म करता है, ना अल्लाह ताला की ज़ात में कोई शर है और ना कोई बुराई उसके अंदर मौजूद है। दूसरा माना है जो मखलूक की सिफात से ऊंचा और बरतर है, जिसकी मानित कोई दूसरा नहीं। लैसा कमिस्लिही शैयुन, उस जैसी तो क्या उसकी मिसाल जैसी भी कोई चीज़ नहीं। तीसरा जो बड़ाई और असमत वाला है, और हर चीज़ उसकी जलालत के सामने छोटी और हकीर है। और चौथा मानी है जिसे आसमानों और ज़मीन की बादशाहत और बड़ाई जेब देती है। दुनिया में भी बादशाहियाँ होती हैं लेकिन कहाँ तक? दुनिया में सबसे जो बड़ा मुल्क है उसको सोचिए, इतना को बड़ा होगा। क्या उस मुल्क का बादशाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है? क्या वो मुल्क आसमानी आफात से हमेशा बचा रहता है? क्या उस मुल्क की सारी पैदावार उसी मुल्क में होती है? क्या उस मुल्क के बादशाह को दूसरी जगह से कुछ लेने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आई? और छोड़ दीजिए, उस मुल्क के बादशाह या जो भी उसका बड़ा है, क्या वो खुद मौत से मुबर्रा है? क्या उसको कभी बीमारी नहीं आई? उसको कभी कोई कमज़ोरी लाहक नहीं हुई? क्या जब से दुनिया बनी या जब से वो मुल्क बना, सारे उसी शख्स को बादशाह देख रहे हैं? कितने बदले! हम तो अपने हाथों से कई बार इस चीज़ का इजहार कर देते हैं कि देखो कि ये जो चीज़ है कमज़ोरी की अलामत है, कि ये बादशाह या वज़ीर या सदर 4-5 साल के लिए आया। हम तो ख़ुद उनकी कमज़ोरी की दलील साबित कर देते हैं कि ये हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो कल था, आज है और कल रहेगा। कुन फयाकुन का मालिक एक इशारा करता है और वो काम हो जाता है। जिसने सूरज को रोशनी दी, जिसने चाँद को चमकना सिखाया, जिसने कायनात के अंदर एक एक ज़र्रे को उसका काम सिखाया, क्या वो ज़ात इस काबिल नहीं कि उसको हम अल मुतकब्बिर कहें? उसकी बड़ाई को महसूस करने की देर है। जब अल्लाह की बड़ाई दिल में आती है तो आंखें झुकने लगती हैं, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला की बड़ाई समझ में आ जाए और इंसान को अपना छोटा होना समझ ना आए। ये साइमल्टेनियस चलता है। सी सॉ देखी होगी आपने, राइड होती है कि दोनों तरफ लोग बैठते हैं, एक इधर है तो एक उधर, उसमें क्या होता है? एक साइड पे जब जितना कोई ऊंचा जाता है तो दूसरी साइड से कोई उतना नीचे आता है, यही खेल है ना। एक टॉप पे है तो दूसरा नीचे है, बस यही कैफियत समझे। तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ाई वाली है, हम छोटे हैं। हम जब अपनी छोटे होने को समझेंगे तो बात बनेगी। अल्लाह ताला ने अपना ये नाम अल मुतकब्बिर कुरान पाक में सिर्फ एक जगह इस्तेमाल किया, और वो कहाँ है? सूरत हशर की आयत नंबर 23 में आता है, अल अजीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, गालिब ज़बरदस्त और बड़ाई वाला। और दूसरा नाम जो इसके साथ हम देख रहे हैं अल कबीर, वो इससे थोड़ा सा वाइड रेंज रखता है, यानी मुतकब्बिर में ज़्यादा मुबालगा है, कबीर फाइल काफ बारा इसी का रूट है। ये 6 दफ़ा कुरान पाक में आया है, यानी 6 आयात ऐसी हैं कि जिसमें ये नाम आया। मसलन सूरत रात की आयत नंबर 9 में आता है, आलिमुल गैबी व शहादतिल कबीरुल मुतआल। क्या मतलब है इसका? गैब को जानने वाला और जाहिर को जानने वाला, बहुत बड़ा और बहुत बुलंद। इसी तरह सूरत हज की आयत 62 में आता है, व अन अल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, और बेशक अल्लाह ताला बड़ा है और बहुत बड़ा। यहाँ देखिए अल अली भी आ रहा है, अल मुताल भी आ रहा है। क्या ये नाम हम जब कुरान पाक में अपनी तिलावतों के दौरान पढ़ते हैं तो हमारे दिल में अल्लाह ताला की कोई बड़ाई आती है? क्या वाकई हम महसूस करते हैं कि हम छोटे हैं? कब आखिरी दफ़ा हमने सोचा कि अल्लाह तू बहुत बड़ा है, तेरी ज़ात इसी को कमाल है? आप कहें कि हम तो हर वक्त यही कहते हैं कि अल्लाह तू बहुत बड़ा, तो जब कोई बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी बात भी बड़ी हो जाती है, फिर उसका हुक्म भी बड़ा हो जाता है, उसकी नाराज़गी इंसान के लिए बहुत बड़ी नाराज़गी हो जाती है, उसको राज़ी करना इंसान की ज़िंदगी की असल तमन्ना बन जाती है। जब अल्लाह ताला के नाम के साथ जब हम इतनी सिफात को पढ़ते हैं तो फिर तो दिल बंद होना चाहिए कि वो ज़ात कि जिसके आगे समंदर, दरिया, पहाड़ सब झुके हुए हैं, तो फिर मैं कैसे बड़ा बनूं? फिर इसी तरह सूरह जासिया की आयत 37 में आता है, वलहुल किब्रिया उफिस समावाति वल अर्द वहुवल अजीज़ुल हकीम, और उसी के लिए बड़ाई है आसमानों में और ज़मीन में, और वही है ज़बरदस्त हिकमत वाला। यहाँ लफ्ज़ किब्रियाई आया, तो ये भी तो वही लफ्ज़ है ना, किब्र से बड़ाई, तकब्बुर। अब देखिए कि ये सारी बातें जब हम कुरान मजीद में देखते हैं तो हमें एक बात तो ज़रूर समझ में आती है, और वो क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात का जो कमाल है ना, बंदे को ये चीज़ लायक नहीं। याद रखिए कि जब अल्लाह ताला के लिए नाम अल मुतकब्बिर आता है तो ये अच्छे मानों में आता है, ये उसको जेबा है, लेकिन जब यही बात बंदे की सिफत बन जाती है ना तो ये ऐब बन जाता है। इंसानों में भी आपने लफ्ज़ सुना होगा कि फलां बड़ा मुतकब्बिर है, तो क्या इंसान को जेब देता है कि वो मुतकब्बिर बने? क्या इंसान अपने आप को बड़ा बना सकता है? वो इंसान जो अपनी ज़ात पे भी काबू नहीं रख सकता, उसके अपने जिस्म पे उसका काबू नहीं चलता, उसकी अपनी ज़िंदगी के फैसले उसके अपने हुक्मों के नहीं, क्या उस इंसान को बड़ा बनने की कोई इजाज़त है? इसके बावजूद आप देखिए कि इंसान क्या बनता है, इंसान अपने आप को कहाँ पे लेके जाता है। सारा दिन देखें तो हमारी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ इसी चीज़ की तो नहीं कि हम बड़े बन जाएं, हमारे घर बड़े बन जाएं, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा स्टेटस, बड़ी तरक्की, बड़े बैजेस, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े स्लोगन्स। हम शौर से करें या बेशौरी से करें, लेकिन कोशिशें बड़े बनने की हैं। हदीस कुदसी है, एक बड़ी खूबसूरत आपके सामने रखूंगी जिसमें अल्लाह ताला के इस नाम के हवाले से कुछ बात है, और वो क्या है? अल किब्रिया और रिदाई, अल्लाह ताला फरमाते हैं किब्रियाई मेरी चादर है, ये चादर है ना रिदा जिसको हम बोलते हैं, वल अजमतु इजारी, और अजमत मेरा तहबंद है, फमन नाज़ा अन्नी वाहिदम मिनहुमा, जो कोई इन दोनों में से किसी को मुझसे छीनेगा, تو میں اس کو آنکھ میں اٹھا کر پھینک دوں گا. یعنی بڑا بننا اللہ کی ذات میں ہے. بڑائی، عظمت، کبریائی، اپنے آپ کو بڑا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جب بندہ اکڑ کے جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ انسان خود دیکھ سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ کائنات کتنی بڑی ہے نا. آپ سب اپنی زندگی میں جہاں جہاں جا چکے، ذرا غور کریں 10 سیکنڈ کے لیے، آپ اپنی تصور میں ان تمام جگہوں کو لائیں جہاں تک آپ جا چکے، خود نہیں گئے، گلوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کسی بھی طرح آپ نے دیکھا کہ دنیا کتنی بڑی ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا کے ہر کونے کا رنگ فرق ہے. آسمان ایک ہی ہے، زمین ایک نہیں ہے. آسمان کا رنگ ہمیشہ نیلا ہے لیکن زمین مختلف ہے. کہیں سفید مٹی، کہیں سرخ مٹی، کہیں خاکی رنگ کی، کہیں بھورے رنگ کی، کہیں براؤن کی. اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو مختلف جگہ کی مٹی لی تھی. اسی لیے فرمایا کہ جو ان کی نسلوں میں انسانوں کی رنگتیں فرق ہیں نا، یہ اس مٹی کا فرق ہے. کچھ لوگوں کی وائٹ مٹی کی بنی، کچھ کی گندمی کی، ہم پاکستانی لوگوں کی بھوری سی بن گئی، کچھ کچھ اس میں بھی وائٹ ہو جاتے ہیں. کچھ سوڈانی لوگ ہیں، آپ دیکھیں تو ان کو کتنا کالے رنگ کی مٹی سے بنایا. یہ اس کی شان ہے، جو چاہے کرے. یہ بندوں کو دیکھیے کہ جو ان کے کام ہیں، جو ان کی صفات ہیں، کیا یہ اللہ کی بڑائی کی دلیل نہیں؟ ایک ماں کتنی بھی کوشش کر لے کہ میرا بچہ اس شکل کا ہو جائے، ہو جاتا ہے. بیٹا پیدا ہو جائے، ہو جاتا ہے پیدا. کبھی کبھی میں نے دیکھے بیٹی کی تمنا میں ماشاءاللہ 10-10 بیٹے ہو جاتے ہیں. اللہ نہیں چاہتا تو نہیں دیتا. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو چاہیں گے اور ان کو ایک بھی نہیں ملتا، اور کتنے ہی ہیں جو نہیں چاہتے پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر سال ایک نیا بچہ دے دیتا ہے. یہ سب کس کے کام ہے؟ یہ اللہ کے کام ہے. اس زمین کو دیکھ لیجئے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس زمین کے اندر کیا کچھ ہے؟ اس کی تہوں میں آگ چھپی ہوئی ہے، بڑی بڑی گیسز، آگ اور بارود کے گولے ہیں. کس نے بنایا؟ ہم اس زمین پہ کتنے مطمئن بیٹھے ہیں. ہم ہلتے جلتے ہیں، زمین نہیں ہلتی. ہم ہلیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ہل رہے ہیں، زمین ہلے تو کتنے انسان ہل جاتے ہیں، کتنے زلزلے آ جاتے ہیں، اور کتنے اس کے اندر آپ دیکھیے کہ لاوے پھوٹ نکلتے ہیں. سورج اور چاند کو دیکھ لیں، کیا لگتے ہیں دور سے؟ 2 فٹ بال. ایسے ہی ہے نا، جب آپ چودھویں کا چاند دیکھتے ہیں دور سے تو کیا دکھتا ہے؟ 1 فٹ بال ہے، چمکتا ہوا. لیکن کتنا بڑا ہے، کون ہے جو اس کو گھما رہا ہے؟ یہ سورج کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو المتکبر کہلانے کا حق نہیں ہے؟ نا حق، اس کو بڑا بن کے رہنے کا حق ہے. صرف آپ اپنے سولر سسٹم کو دیکھ لیں، کتنے ستارے. آپ دیکھیے کہ ہزاروں گلیکسیز ہیں اس دنیا میں. کس کو انٹرسٹ ہے اس چیز سے، ستاروں کو دیکھنا اور یونیورس میں تدبر کرنا؟ یعنی آپ جب گم ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے اندر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کر رہی ہے. تو بات صرف یہی ہے کہ جب تک ہم اس کی ذات کو نہیں مانیں گے اس وقت تک ہم اس کی بات کو بھی نہیں مانیں گے. اللہ کی ذات کا احساس ہو جاتا ہے نا، ہم اس کو بڑا ماننے لگتے ہیں تو اس کی بات کو ماننا آسان ہوتا ہے. سورہ یاسین کی آیت 38 سے 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. نہ سورج آگے جا سکتا ہے، نہ چاند آگے جا سکتا ہے. یہ سب ایک بڑی ذات کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں. ہمارا کام تو یہ ہے کہ بس اس کو پکار لیں. آپ سورۃ الانعام کو ترجمے سے اگر پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ حق دکھتا ہے. مشرق ماحول میں پیدا ہوئے، چاروں طرف لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ رب کی تلاش میں تھے. سورج کو دیکھا، کہا حاضر ربی. شام ہوئی تو سورج غائب ہو گیا. کہنے گئے انی لا احب الافلین، میں پسند نہیں کرتا چھپنے والوں کو. چاند نکل آیا، دیکھا کہا او حاضر اکبر، یہ بڑا ہے، یہ ہوگا چاند. وہ بھی چھپ گیا. ستارہ ڈوبا، چاند چھپا، सूरज चुग गया, कहने लगे नहीं बस इसको नहीं मानूंगा। क्या कहते हैं, इन्नी वज्जहत वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्दा हनीफ़ं वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैंने अपना चेहरा उस एक की तरफ कर लिया जो इस सबको पैदा करने वाला है। हम जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये किस्सा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं वाह, उन्होंने कैसे देखा, क्या किया होगा। और लोगों ने कहानियाँ भी घड़ी, वो पैदा हुए थे, फिर उनकी माँ उनको गार में ले गई थी, फिर उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, फिर जब थोड़े जवान होने के करीब थे फिर एक दिन बाहर आके देखा तो सूरज दिखा, चांद दिखा, इसलिए इस पे हैरान हुए। तो क्या ये बात अक्ल को लगती है? लेकिन वो देखना कौन सा देखना था? ये वही देखना था जो रोज़ आज हम भी देखते हैं, लेकिन उन्होंने इबरत से देखा। आज हमने कब आखिरी दफ़ा सूरज और चांद को चमकता देख के उनसे बातें की कि वाह तुझे रब ने पैदा किया, तू है मेरे रब का शाहकार, तू है ऐसा और वैसा। हम तो खुद चांद बनना चाहते हैं, हम तो खुद चमकना चाहते हैं, हमें अपने रब की चमकती हुई चीज़ें जो हैं वो कम ही मुतासिर करती हैं। तो बात ये है कि जब अल्लाह ताला के सामने इंसान झुकता है तो फिर वो टूटता भी है, वो गिरता भी है, जैसे चांद बड़ा होने के बावजूद नीचे जा जा के छुप जाता है। सूरज कितना बड़ा है, लेकिन रिवायत में आता है कि सूरज कहाँ जाता है। लोगों ने आपसे पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरज हमारे से जब छुपता है तो कहाँ जाता है? अब उस वक़्त तक तो साइंस ने कोई इतनी तरक्की नहीं की थी ना कि वो कह दें जी वो उधर से निकल आता है, वो पाकिस्तान में सुबह हो जाती है तो इधर रात हो जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब सूरज ग़ुरूब होता है तो अल्लाह ताला के अर्श के आगे जाके सजदे में चला जाता है। ये अल्लाह की शान है, इतना बड़ा वो मालिक है। दुनिया में लोगों के छोटे छोटे घरों को देख के हम मुतासर होने लगते हैं, वो चीज़ें जो उनको अल्लाह ताला ने दी उनको ही देख के हम मरूफ होने लगते हैं। तो बात यह है कि हमने अपने रब से मरूफ होना है। ये जो लफ्ज़ है ना मरऊफ, इसमें रोब पाया जाता है, अल्लाह के रोब में आना है। जिस बेनियाजी की ज़िंदगी आज इंसानों की अक्सरियत गुजार रही है, क्या देख के लगता है कि अल मुतकब्बिर के साथ उनका ताल्लुक है? जो लोग खुद अपने आप को बड़ा बनाना चाहें, क्या उनको पता है कि हम ये अल्लाह ताला की निगाहों में कितने हैं? तो हम सब को भी इस नाम पे गौर करते हुए अपने लिए अमल की बातें लेनी है। पहली बात तो ये है कि बड़ाई उसकी ज़ात को है। मैं बड़ी नहीं बन सकती, मैं छोटी रहूँगी। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम पहाड़ों की बुलंदी को नहीं पहुँचोगे, तुम जितने मर्जी पाँव ऊँचे कर करके उछलो। और हम किन की नज़रों में बड़े बनते हैं? वो जो खुद छोटे इंसान, हम जैसे कमज़ोर। फिर दूसरी चीज़ जो इंसान के दिल से तकब्बुर निकाल सकती है अपने लिए, वो क्या है कि इंसान अपनी औकात को पहचाने। आप देखिए कि इंसान दिन में चंद घंटे इस पोजीशन में होता है कि जो किसी के सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मैं अक्सर कहती हूँ कि इंसान ने अगर अपनी हैसियत पहचान ली है ना तो उस वक्त पहचाने जब रेस्ट रूम से बाहर निकलता। इतनी बदबूदार जगह से वो निकल के आया, हमारे जिस्म के अंदर इतनी गंदगी है। आप लम्हे के लिए सोचिए कि थोड़ा सा हिस्सा उसका बाहर आता है तो कितनी बदबू आती है। तो ज़रा अपने अंदर झांक के सोचें, शायद कभी कोई ऐसा दौर आ जाए, कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा आला निकल आए कि इंसान अपने अंदर झांक के देख सके। महसूस होता है मेरे अंदर कितनी बदबू होगी? आपने कभी महसूस किया कि जो डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं और पेट को खोलते हैं तो क्या किया होता है उन्होंने? उन्होंने अपने नाक के आगे रुई दी होती है, मास्क भी लगाते हैं, जर्म से तो बचते हैं, बदबू भी है इंसान के अंदर। इतना बदबू वाला इंसान, इतना गंदा इंसान, इतना कमज़ोर इंसान, खाना खाते हुए एक लुकमा खलक में फंस जाए तो अपनी औकात समझ आ जाए। हर लुकमा मौत के आगे से गुजर के आता है। खाने की जगह सांस की नाली में अगर खाना चला जाए तो मौत समझ आ जाएगी। और वो बड़े बड़े जिनकी बड़ाई से मरूब हैं, अगर एक बिस्किट खाते हुए गले में बिस्किट फंस जाए तो लोगों को उनका पता चल जाए कि वो कितने को बड़े हैं। तो बात यह है अपनी औकात को पहचाने। इंसान कितनी दफ़ा बीमार होता है, बीमारी में अपने आप को पहचाने, ये दूसरी चीज़ है। जब कभी बीमारी आती है ना तो अपने आप को पहचाने, ये है मेरी औकात। अब देखते हैं कि बाज़ों का इंसान बिल्कुल ठीक ठाक होता है, अच्छा भला होता है, एकदम कमर में बल पड़ जाता है, रात को ठीक ठाक सोए, सुबह उठे तो कमर ही नहीं सीधी हो रही, गर्दन में बल पड़ गया, और इंसान उसकी क्या तावीलात देता है। वो तकिया ठीक नहीं मिला आज, आज गद्दा नरम नहीं था, आज मैं एक ही करवट पे चढ़ सोई रही, आज ये हो गया। नहीं मानता कि अल्लाह ताला उसको उसकी असल औकात दिखा रहा है। तुम छोटे हो, तुम बड़े नहीं बन सकते। इसके बरक्स हमारे 24 घंटों में से कितने घंटे हैं जो खुद को बड़ा बनाने में गुजरते हैं। लिखें ज़रा अपने पास, दिन का कितना हिस्सा मैं खुद को बड़ा बनाने में गुजारती हूँ।